वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जी सुनो, भाइयों के सहित कीचक को अकस्मात मारा देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ तथा उस नगर और राष्ट्र में जहां जहां वे आपस में मिलकर ऐसी चर्चा करने लगे, अरे महाबली कीचक अपनी शूरवीरता के कारण राजा विराट को बहुत प्यारा था, उसने अनेकों सेनाओं का संहार किया, किंतु साथ ही वह दुष्ट परस्त्री गामी था, इसी से उस पापी को गंधर्वों ने मार डाला। आखिर धर्म को देखने वाले तो होते ही है ना। महाराज, शत्रु सेना का संहार करने वाली दुर्जय वीर कीचक के विषय में सब जगह चर्चा होने लगी। इधर इन्हीं दिनों अज्ञातवास की अवस्था में पांडवों का पता लगाने के लिए दुर्योधन ने जो गुप्तचर भेजे थे, वे अनेकों ग्राम राष्ट्र नगरों में खूब ढूंढ ढूंढ करके हस्तिनापुर लौट आए। राजसभा लगी हुई थी। उस समय में सब कुरुराज दुर्योधन के पास आए। वहां महात्मा भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, त्रिगर्त देश के राजा और दुर्योधन के भाई भी मौजूद थे। उन सबके सामने उन्होंने कहा, राजन, पांडवों का पता लगाने के लिए हम सदा ही बड़ा प्रयत्न करते रहे, किंतु वे किधर से निकल गए, कहां पहुंच गए, कुछ नहीं जान सके। हमने पर्वतों के ऊंचे ऊंचे शिखरों पर, भिन्न भिन्न देशों में, जनता की भीड़ में, गांव में, नगर में बहुत खोज की, कोई पता नहीं चला। ऐसा मालूम होता है वनवास का कष्ट भोगते भोगते वे नष्ट हो गए हों। इसलिए अब तो आपके लिए मंगल ही मंगल है। हमें इतना पता अवश्य लगा है कि इंद्रसेन आदि सारथी पांडवों के बिना ही द्वारिकापुरी पहुंचे हैं। वहां न तो द्रौपदी है और न पांडवी है। ये आपके लिए बड़े आनंद का समाचार है, क्योंकि वे छौई मर गए हैं। एक समाचार और भी सुना है, बड़ा आनंद का समाचार वह भी है कि राजा विराट का जो महाबली सेनापति कीचक था, जिसने कि अपने महान पराक्रम से त्रिगर्त देश को दलित कर दिया था, उस पापात्मा को उसके भाइयों सहित रात्रि में गुप्त रूप से गंधर्वों ने मार डाला। ये हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि हमारा ही त्रिगर्त देश है और उसको कीचक ने दलित कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, वो भी मारा गया। बड़ी प्रसन्नता की बात है। दूतों की ये बात सुनकर दुर्योधन बहुत देर तक विचार करता रहा और उसके बाद उसने सभासदों से कहा, पांडवों के अज्ञातवास के इस 13वें वर्ष में बहुत थोड़े दिन शेष हैं। यदि ये दिन समाप्त हो गए तो सत्यवादी पांडव मदमाते हाथी और विषधर सर्प के समान क्रोधातुर होकर कौरवों के लिए बड़े दुखदायी हो जाएंगे। वे सभी समय का हिसाब रखने वाले हैं, इसलिए कहीं बिल्कुल अपने आप को छिपाकर छिपे हैं। इसलिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि वे अपने क्रोध को पीकर फिर वन में ही चले जाएं। इसलिए शीघ्र ही उनका पता लगाओ, जिससे हमारा ये राज्य सब प्रकार की विघ्न बाधा और विरोधों से मुक्त होकर चिरकाल तक अक्षुण्ण बना रहे। ये सुनकर कर्ण ने कहा, भरतनंदन, शीघ्र ही दूसरे कार्यकुशल जासूसों को और भेजा जाए। वे गुप्त रूप से धनधान्यपूर्ण और जनाकीर्ण देशों में जाए तथा सुरम्य सभाओं में, सिद्ध महात्माओं के आश्रमों में, राजनगरों में, तीर्थों में, गुफाओं में वहां के निवासियों से बड़े विनीत शब्दों में युक्ति युक्त पूछकर अपने भाव को छिपाते हुए ये मालूम करें कि पांडव कहाँ है। उनको ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम दुर्योधन के भेजे हुए हैं। दुशासन ने कहा कि वे पांडवों की बनकर के जाएं, और ऐसे लोगों के पांडवों के आत्मी बने कि जैसे दुर्योधन के अत्याचारों से हम बड़े पीड़ित हैं, हमें धर्मात्मा पांडव चाहिए, हम उनके यहां प्रजा में बड़े दुखी रहे हैं, हमारी खूब निंदा करे, पांडवों की खूब प्रशंसा करे, फिर कहीं ना कहीं पांडवों का पता लग सकता है। कर्ण ने कहा वो भी ठीक है। तत्वदर्शी परम पराक्रमी द्रोणाचार्य ने कहा पांडव लोग बड़े शूरवीर, विद्वान, बुद्धिमान, जितेंद्रीय, धर्मज्ञ, कृतज्ञ और अपने ज्येष्ठ भाई धर्मराज की आज्ञा में चलने वाले हैं। ऐसे महापुरुष न तो नष्ट होते हैं और न किसी से तिरस्कृत होते हैं। धर्मराज बड़े शुद्ध चित्त, गुणवान, सत्यवान, नीतिमान, पवित्र आत्मा और यश तेजस्वी हैं। उन्हें तो आंखों से देख लेने पर भी कोई नहीं पहचान सकता। अतः इस बात पर ध्यान रखकर ही हमें ब्राह्मण, सेवक, सिद्ध पुरुष अथवा उन अन्य लोगों से जो कि उन्हें पहचानते हो ढूंढवाना चाहिए। ऐसे तमाशे से वो नहीं मिलेंगे। इसके पश्चात भरत वंशों के पितामह, देश काल के ज्ञाता और समस्त धर्मों के जानने वाले भीष्म जी ने कौरवों के हित के लिए कहा भरत नंदन, पांडवों के विषय में मेरा एक विचार वो कहता हूं। जो नीतिमान पुरुष होते हैं उनकी नीति को अनीति परायण लोग नहीं ताड़ सकते। उन पांडवों के विषय में विचार करके हम इस संबंध में कुछ कर सकते हैं, वही मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं। द्वेषवश कोई बात नहीं कहता। युधिष्ठिर की जो नीति है उसकी मेरे जैसे पुरुषों को कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसे अच्छी नीति ही कही जानी कहना चाहिए। अनीति कहना किसी प्रकार ठीक नहीं है। राजा युधिष्ठिर जिस नगर या राष्ट्र में होंगे वहां की जनता भी दानशील, प्रियवादिनी, जितेंद्रीय और लज्जाशील होगी। जहां वे रहते होंगे वहां के लोग प्रियवादी, संयमी, सत्यपरायण, हृष्टपुष्ट, पवित्र और कार्यकुशल होंगे। जहां उनकी स्थिति होगी वहां के मनुष्य स्वयं ही धर्म में तत्पर होंगे तथा वे गुणों में दोष का आरोप करने वाले, ईर्ष्यालु, अभिमानी और मत्सरी नहीं होंगे। वहां हर समय वेद ध्वनि होती होगी, यज्ञों में पूर्णाहुतियां दी जाती होंगी, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले बहुत से यज्ञ होते होंगे। वहां मेघ निश्चय ही ठीक ठीक वर्षा करता होगा तथा वहां की भूमि धनधान्य पूर्ण और सब प्रकार के आतंकों से शून्य होगी। वहां आनंददायी पवन चलता होगा, धर्म का स्वरूप पाखंड शून्य होगा और किसी प्रकार का भय नहीं होगा। उस स्थान पर गौओं की अधिकता होगी और वे कृष दुर्बल न होकर खूब हृष्टपुष्ट होंगी। उनका दूध, उनका दही, उनका घी बड़े सरस और गुणकारक होंगे। राजा युधिष्ठिर अत्यंत धर्मनिष्ठ हैं। उनमें सत्य, धर्म, दान, शांति, क्षमा, लज्जा, श्री, कीर्ति, तेज, दयालुता, सरलता निरंतर निवास करती है। अतः अन्य साधारण पुरुष तो क्या, ब्राह्मण लोग भी उन्हें नहीं पहचान सकते। अतः जहां ऐसे लक्षण पाए जाए वहां मतिमान पांडव लोग गुप्त रीति से रहते होंगे, तो मैं वहीं जाकर उन्हें ढूंढो। इसके सिवा उनके विषय में दूसरी बात मैं नहीं कह सकता। मेरे कहने में यदि तुम्हें विश्वास है तो इस पर विचार करो और शीघ्र कार्य करो। इसके पश्चात कृपाचार्य ने कहा वयोवृद्ध भीष्म जी का पांडवों के विषय में जो कथन है वह युक्ति युक्त और धर्मानुसार है। उसमें धर्म और अर्थ दोनों ही निहित हैं, साथ ही वे बड़ा मधुर और हेतु गर्भित भी है। उन्हीं के अनुरूप इस समय मेरा भी जो कथन है वो सुनो। तुम लोग गुप्तचरों से पांडवों की गति और स्थिति का पता लगाओ और उसी नीति का आश्रय लो जो इस समय हितकारिणी है। ये याद रखो कि अज्ञातवास की अवधि समाप्त होते ही महाबली पांडवों का उत्साह बहुत बढ़ेगा, उनका तेज अतुलित है। अतः इस समय तुम्हें अपनी सेना, कोष और नीति की संभाल रखनी चाहिए, जिससे कि समय आने पर हम उनके साथ यथावत संधि भी कर सकें। बुद्धि से भी तुम्हें अपनी शक्ति की जांच करनी चाहिए और इस बात का भी पता रहना चाहिए कि तुम्हारे बलवान और निर्बल मित्रों में निश्चित शक्ति कितनी है। तुम्हें अपनी श्रेष्ठ, निकृष्ट और मध्यम कोटि की सेना का रूप देखकर निश्चय करना चाहिए कि वो तुमसे संतुष्ट है या नहीं है। उसके अनुसार ही हमें शत्रुओं से संधि करनी चाहिए या लड़ाई करनी चाहिए। यदि सेना संतुष्ट होगी तो हम शत्रुओं के प्रति अपने धनुष संभालेंगे, और यदि सेना असंतुष्ट होगी तो उनसे संधि कर लेना ठीक है। साम माने समझाना, दान माने धन देना, भेद माने फोड़ लेना, दंड देना और कर लेना, ये नीति है। इससे शत्रु को आक्रमण द्वारा, दुर्बल को बल द्वारा, मित्र को हेलमेल करके, सेना को मिष्ट भाषण और वेतनादि देकर अपने काबू में करना चाहिए। इस प्रकार तुम अपने कोष और सेना को बढ़ा लोगे तो ठीक ठीक सफलता प्राप्त कर लोगे। इसके पश्चात त्रिगर्त देश के राजा महाबली सुशर्मा ने कर्ण की ओर देखते हुए दुर्योधन से कहा, राजन, मत्स्य देश के साल्ववंशीय राजा बार बार हमारे ऊपर आक्रमण करते रहे हैं। मत्स्यराज के सेनापति महाबली सूत पुत्र कीचक ने ही मुझे और मेरे भाई बंधुओं को बहुत तंग किया है। कीचक बड़ा बलवान, क्रूर, असहनशील और दुष्ट प्रकृति का पुरुष था। उसका पराक्रम जगत विख्यात था, इसलिए उस समय हमारी दाल नहीं गली। अब उस पापकर्मा और निशंस सूत पुत्र को गंधर्वों ने मार डाला है। उसके मारे जाने से राजा विराट आश्रयहीन और निरुत्साह तो जरूर हो गया होगा। कीचक जैसा मर जाए फिर राजा के पास ऐसा क्या उपाय होगा सेना को संभालने का। इसलिए यदि आपको समस्त कौरवों को और महामना कर्ण को ठीक जान पड़े तो मेरा आपसे निवेदन है कि उस देश पर चढ़ाई करो। उस देश को जीतकर जो विविध प्रकार के रत्न, धन, ग्राम और राष्ट्र हाथ लगेंगे उन सबको हम आपस में बांट लेंगे। त्रिगर्त की बात सुनकर कर्ण ने कहा, हे दुर्योधन, राजा सुशर्म ने बड़ी अच्छी बात कही है। ये समय के अनुसार और हमारे बड़े काम की बात है। अतः हम सेना सजाकर उसे छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर, अथवा जैसे आपकी सलाह हो उसे तुरंत उस देश पर चढ़ाई कर दें। त्रिगर्तराज और कर्ण की बात सुनकर राजा दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी, भाई दुशासन, तुम बड़े बूढ़ों से सलाह करके चढ़ाई की तैयारी करो। हम लोग सब कौरवों सहित एक नाके पर जाएंगे और महारथी सुशर्मा, त्रिगर्त देशीय वीर और सारी सेना के सहित दूसरे मोर्चे पर जाएंगे। पहले सुशर्मा चढ़ाई करेंगे, उसके एक दिन बाद हमारी सेना कूच करेगी, ये ग्वालियों पर आक्रमण करके विराट का गोधन छीन लेंगे। उसके बाद हम भी अपनी सेना को दो भागों में विभक्त करके राजा विराट की एक एक लाख गौवें हर लेंगे। सुशर्मा ने अपने पूर्व बैर का बदला लेने के लिए त्रिगर्त देश के सभी रथी, पदाती और वीरों को लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन विराट की गौवें छीनने के लिए अग्नि कोण से आक्रमण करने के लिए अपनी सेना भेज दी। उसके दूसरे दिन समस्त कौरवों ने मिलकर दूसरी ओर से जाकर विराट की हजारों गौवें पकड़ ली। अब छद्म वेश में छिपे हुए अतुलित तेजस्वी पांडवों का छद्म वेश में छिपे हुए अतुलित तेजस्वी पांडवों का 13वां वर्ष भली भांति समाप्त हो चुका था। इसी समय सुशर्मा ने चढ़ाई करके राजा विराट की बहुत सी गौवें कैद कर ली। यह देखकर राजा का प्रधान गोप बड़ी तेजी से नगर में आया और फिर रथ से कूदकर राजसभा में पहुंचकर राजा को सूचना दी, महाराज त्रिगर देश के योद्धा हमें युद्ध में परास्त करके आपकी 1,00,000 गौवें ले जा रहे हैं, आप इन्हें छुड़ाने का प्रबंध कीजिए, ऐसा न हो कि आपका गोदन बहुत दूर निकल जाए। यह सुनते ही राजा ने मत्स्य देश के वीरों की सेना एकत्रित की, उसमें रथ हाथी घोड़े पदाती सभी प्रकार की योद्धा थे, अनेकों ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, अनेकों राजा और राजपुत्र कवच पहनकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार सैकड़ों देवतुल्य महारथियों ने स्वेच्छा से कवच धारण कर लिए और युद्ध सामग्री से संपन्न सफेद रथों में सोने के साथ से सजे हुए घोड़े जुतवाकर उन पर बैठकर नगर से बाहर निकले। मत्स्य देश के राजा विराट नगर। इस प्रकार जब सारी सेना तैयार हो गई तो राजा विराट ने अपने छोटे भाई शतानिक से कहा, मेरा ऐसा विचार है कि ये कंक बल्लव तंतिपाल और ग्रंथिक ये बड़े वीर हैं, निस्संदेह युद्ध भी कर सकते हैं, इन्हें भी ध्वजा पताका से सुशोभित रथ और जो ऊपर से दृढ़ किंतु भीतर से कोमल है ऐसे कवच इनको भी पहरा दो और नहीं तो कुछ तो युद्ध करेंगे। राजा विराट की बात सुनकर शतानिक ने इन पांडवों के लिए भी रथ तैयार करने की आज्ञा दी और महारथी पांडव सुवर्ण जटित रथों पर बैठकर एक साथ राजा विराट के पीछे चले। वे चारों भाई बड़े शूरवीर और सच्चे पराक्रमी थे, उनके सिवा 8,000 रथी 1,000 गजारोही 60,000 घुड़सवार भी राजा विराट के साथ चले। विराट की सेना बड़ी अच्छी लग रही थी, वह गौओं के खुरों को चिन्ह देखते देखते आगे बढ़ी। मत्स्य देशीय वीर नगर से निकलकर व्यूह रचना करने लगे और उन्होंने सूर्य ढलते ढलते त्रिगर्तों को पकड़ लिया। बस दोनों ओर के वीर परस्पर में शस्त्र संचालन करने लगे, देवासुर संग्राम की तरह संग्राम होने लगा, भयंकर रोमांचकारी युद्ध हुआ। उस समय इतनी धूल उड़ी कि पक्षी भी अंधे होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। दोनों ओर से छोड़े गए बाणों की ओट में सूर्य नारायण दिखने बंद हो गए। रथियों से पदाती पदातियों से घुड़सवार घुड़सवारों से और गजारोही गजारोहियों से भिड़ गए लड़ने में। क्रोध में भरकर एक दूसरे पर तलवार पट्टे स्प्राश शक्ति तोमर आदि अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे, परंतु परिक के समान प्रचंड भुजदंडों से प्रहार करने पर भी वे अपना सामना करने वाले वीरों को पीछे नहीं हटा पाते थे। बात की बात में सारी रणभूमि कटे हुए मस्तक और छिदे हुए देहों से पटी सी दिखाई देने लगी। इस प्रकार युद्ध करते करते शतानिक ने 100, विशालाक्ष ने 400 त्रिगर्त वीरों को धराशायी कर दिया। फिर वे दोनों महारथी शत्रुओं की सेना के भीतर घुस गए, विपक्षी वीरों के केश पकड़ पकड़ कर पटकने लगे और उन्होंने बहुतों के रथों को चकनाचूर कर दिया। राजा विराट ने 500 रथी 800 घुड़ सवार और 5 महारथी मार डाले। फिर तरह तरह से रथ युद्ध का कौशल दिखाते हुए सोने के रथ पर चढ़े हुए सुशर्मा से आकर भिड़ गए। उन्होंने 10 बाणों से सुशर्मा को और 5 बाणों से उसके चारों घोड़ों को बीन दिया। रणोन्मत्त सुशर्मा ने उन्हें 50 बाणों से बीन दिया। सुशर्मा बड़ा वीर बांकुरा था, उसने मत्स्यराज की सारी सेना को अपने प्रबल पराक्रम से रौंद डाला। फिर राजा विराट की ओर दौड़ा, उसने विराट के रथ के दोनों घोड़ों को तथा अंगरक्षक और सारथी को मारकर उन्हें जीवित पकड़ लिया और अपने रथ में डालकर वो चल दिया। ये देखकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, महाबाहु, जिसके यहां हम रोटी खा रहे हैं वो राजा पकड़ा गया। त्रिगर्तराज सुशर्मा महाराज विराट को ले जाए जा रहा है, तुम उन्हें झटपट छुड़ा लो, ऐसा न हो कि वे शत्रुओं के पंजे में फंस जाएं। भीमसेन ने कहा, महाराज मैं तो आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा ही कर रहा था, अब आपकी आज्ञा से अभी छुड़ा लाता हूं। उसी समय वृक्ष को उखाड़ा और वो जिस वृक्ष को उखाड़ता वो गदा रूप हो जाता, उसको उखाड़कर बस शत्रुओं का नाश करने लगा। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन ऐसा साहस मत करना कि तुम अपने आप को प्रकट कर दो, लोग पहचान लेंगे ये तो अतिमानुष कर्म करने वाला कोई भीमसेन है, तुम कोई दूसरा ही शस्त्र ले। भीमसेन ने कहा, महाराज मैं तो भूल गया ये सब। जोश में बड़ी फुर्ती से उसने अपना धनुष उठाया और मेघ जैसी जल बरसा करता है। अब वो भीमसेन बाणों की बरसा सुशर्मा पर करने लगा। भाइयों सहित सुशर्मा धनुष चढ़ाकर एक निमेश में रथी भीमसेन से भिड़ गए। भीमसेन ने गदा लेकर विराट के सामने ही सैकड़ों हजारों रथी गजारोही अश्वारोही प्रचंड धनुर्धारी सूरवीरों को मार गिराया, अनेक पैदलों को कुचल डाला। ऐसा विकट युद्ध देखकर रणोन्मत्त सुशर्मा का सारा मद उतर गया और वह इस सेना के सत्यानाश के लिए चिंतित हो उठा और कहने लगा, हाय जो हर समय कान तक धनुष चढ़ाए दिखाई देता था मेरा भाई मेरे से पहले मर गया। फिर वह भीमसेन पर बार बार तीखे बाण छोड़ने लगा। पांडव भी क्रोध में भर गए और घोड़ों को त्रिगर्तों की ओर मोड़कर उन पर दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगे। युधिष्ठिर ने भी बातों में 1000 योद्धाओं को मार डाला। भीमसेन ने 7000 त्रिगर्तों को धराशायी कर दिया। देखो आज अर्जुन नहीं थे, अर्जुन देखो तो नपुंसक ही हिजड़े का ही लड़ी। नकुल ने 700 और सहदेव ने 300 वीरों को नष्ट कर दिया। अंत में भीमसेन सुशर्मा के पास आए और अपने पहने बाणों से उसके घोड़ों को तथा अंगरक्षकों को मार डाला। फिर उसके सारथी को रथ के जुए से गिरा दिया। सुशर्मा के रथ का चक्र रक्षक मदिराक्ष भीम पर प्रहार करने लगा। इतने में वृद्ध होने पर भी राजा विराट रथ से कूद पड़े और गदा लेकर बड़े जोर से उसके ऊपर झपट पड़े। रथहीन हो जाने से सुशर्मा प्राण लेकर भागने लगा। तब भीमसेन ने कहा, राजकुमार आओ, युद्ध के लिए आए थे तो मैं युद्ध से पीठ दिखाना उचित नहीं है क्या? इसी पराक्रम से जबरदस्ती गवों को ले जाना चाहते थे? आओ। ऐसा कहकर भी झटपट अपने रथ से कूद पड़े और सुशर्मा के प्राणों के ग्राहक होकर उसके पीछे दौड़े। उन्होंने लपक कर सुशर्मा के बाल पकड़ लिए और उसे उठाकर पृथ्वी पर पटक कर रगड़ने लगे। सुशर्मा रोने लगा, चिल्लाने लगा। तब भीमसेन ने उसके सिर पर लात मारी और उसके छाती पर घुटने टेक कर ऐसा घूंसा मारा कि वो अचेत हो गया। महारथी सुशर्मा की पकड़ लिए जाने पर त्रिगर्तों की सारी सेना भयभीत होकर भागने लगी। तब महारथी पांडवों ने समस्त गवों को फेर लिया और सुशर्मा को परास्त करके उसका सारा धन छीन लिया। भीमसेन के नीचे पड़ा हुआ सुशर्मा अपने प्राण बचाने के लिए छटपटा रहा था। सारा अंग धूल से धूसरित हो गया, चेतना लिप्त हो गई। भीमसेन ने उसे बांधकर अपने रथ पर पटक दिया और युधिष्ठिर के पास ले जाकर दिखाया, ये वो सुशर्मा है। युधिष्ठिर ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, भैया इस नराधम को छोड़ दो। भीमसेन ने सुशर्मा से कहा, रे मूठ, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो तुझे विद्वानों और राजाओं की सभा में ये कहना पड़ेगा कि मैं दास हूं, तभी तुझे जीवन दान कर सकता हूं। इस पर धर्मराज ने प्रेम पूर्वक कहा, भैया यदि तुम मेरी बात मानते हो तो इस सुशर्मा को छोड़ दो, ये महाराज विराट का दास तो हो ही चुका है। फिर त्रिगर्तराज से कहा, जाओ, अब तुम दास नहीं हो, फिर कभी ऐसा दुस्साहस मत करना। युधिष्ठिर की बात सुनकर सुशर्मा ने बड़ा लज्जा का अनुभव किया, नीचा मुख कर लिया। तब भीमसेन ने कहा, जाओ जियो और अपने स्त्रियों को जाकर कहना कि मेरी विराट के साथ युद्ध करने पर यह दशा हुई है। उसने राजा विराट के पास जाकर प्रणाम किया, बल्लभ ने, भीमसेन ने। इसके पश्चात वह अपने देश को चला गया। फिर मनी सुशर्मा ने प्रणाम किया विराट को, इसके पश्चात अपने देश चला गया। फिर मत्स्यराज विराट ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से कहा, आइए इस सिंहासन पर मैं आपका अभिषेक कर दूं, क्योंकि अब आप हमारे मत्स्य देश के स्वामी हैं। इसके सिवा आपके मन में यदि कोई ऐसी चीज पाने की इच्छा हो जो संसार में अत्यंत दुर्लभ हो तो वो भी मैं देने को तैयार हूं, क्योंकि आप ही ने मुझे सुशर्मा के रथ से छुड़ा लिया है और ये राज्य अब मैं हृदय से आपका मानता हूं। युधिष्ठिर ने मत्स्यराज से कहा, महाराज आपका कथन कितना मनोहर है, मैं इसकी हृदय से सराहना करता हूं, आप बड़े दयालु हैं, भगवान आपको सदा इस प्रकार आनंद में रखे। राजन अब आप शीघ्र ही दूतों को नगर में भिजवाइए, वे आपके संबंधियों को इस शुभ समाचार की सूचना दें और नगर में आपके विजय की घोषणा करवा दें। तब राजा ने दूतों को आज्ञा दी, तुम जाकर मेरी विजय की सूचना दो। मत्स्यराज की आज्ञा को सिर पर रखकर दूत नगर की ओर चले। रात रात में रास्ता तय कर सवेरे नगर के समीप पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने विजय की घोषणा कर दी। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। अभी तो एक मोर्चे को जीता है, अब आएंगे पांडव लोग, कौरव लोग। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण।